नमस्कार भारत। 5 जून दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का अंतिम संस्कार अगले शुक्रवार को। बिहार में 2 टॉपर्स फेल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में।
इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी कैसा है, पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है, जो इंस्टीट्यूशंस और पढ़ाई को गवर्न करता है वो पॉलिसीज क्या है, उसकी नीतियाँ क्या है, और पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना ही होगा।
मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग।
बहुत आपता है, ट्यूबवेल में इनमें पानी नहीं है,
पानी सानू भागता फिर अब पानी मिलते नहीं, बेल भैंस सब तीसा बंद।
इसमें इतना तगम हो गया था, पानी नहीं होने की वजह से सारा खत्म हो गया।
मजदूरी नहीं कर पा रहा है पानी के वजह, सब दिन पानी के लाने खड़े रहो।
समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के परिवार के प्रवक्ता ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। 74 वर्षीय मोहम्मद अली को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर अमरीका में राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुसलमानों का अमेरिका में प्रवेश बंद होना चाहिए। यह बयान उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था और अब मोहम्मद अली के निधन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को पाखंडी बताया है। 5 देशों के दौरे पर अफगानिस्तान में भारत अफगानिस्तान मित्रता सेतु का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। मोदी कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलेंगे और कतर में भारतीय व्यापारियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कतर में एमिर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामगारों से मुलाकात की और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा।
जब भी यहाँ के शासकों से मेरा मिलना होता है, मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करता हूँ, उससे भी भली भांति परिचित हूँ। और 2 दिन के मेरे यहाँ के वास्तव्य के दरमियान, क्योंकि यहाँ के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द और अपने 6 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद स्विट्जरलैंड, अमरीका और मेक्सिको भी जाएंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका पर क्षेत्र में कई देशों पर वेनेजुएला को दरकिनार करने के लिए बर्बर तरीके से दबाव डालने का आरोप लगाया है। क्यूबा की राजधानी हवाना में क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में उन पर अमरीकी देशों के संगठन को अमेरिका का कठपुतली उन्होंने करार दिया है। अमेरिकी देशों का यह संगठन OAS ने लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन करने के लिए वेनेजुएला की सदस्यता संगठन से रद्द करने के लिए कदम उठाए हैं। तेल व्यापार पर आधारित वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और वेनेजुएला की सरकार पर देश के अंदर और बाहर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने कहा है कि क्यूबा वाशिंगटन में आधारित अमरीकी देशों के समूह OAS में दोबारा नहीं जुड़ेगा। हवाना में चल रहे सम्मेलन में उन्होंने संगठन के अध्यक्ष लुई अलमार्गो के उस फैसले का विरोध जताया जिसमें वेनेजुएला की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है। बीबीसी समाचार।
रविवार की इस भोर में बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में बीते लगभग 20 घंटे से एक ही खबर छाई हुई है और वो खबर ये है कि महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का देहांत हो चुका है। दुनिया भर में मोहम्मद अली के चाहने वाले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अगले शुक्रवार यानी 10 जून को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हरिता कांडपाल।
शनिवार को दुनिया को अलविदा कहने वाले महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को अंतिम विदाई शुक्रवार को दी जाएगी। मोहम्मद अली के परिवार की तरफ से कहा गया है कि उनका अंतिम संस्कार अमेरिका में केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में होगा। 74 वर्षीय मोहम्मद अली को सांस लेने में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। मोहम्मद अली के प्रवक्ता बॉब गनल ने एरिजोना में कहा कि वो हमेशा याद किए जाएंगे। मुझे लगता है कि उन्हें अपने मन की बात बोलने वाले व्यक्ति के तौर पर याद रखा जाएगा, एक ऐसा शख्स जो कोई भी खतरा उठाने को तैयार रहता था। वो किसी की भी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वो एक दयालु व्यक्ति थे जिसने दुनिया को बदल दिया। मोहम्मद अली ने सरकार को चुनौती देने के तरीके को भी बदल दिया। बॉब गनल के शब्द। दुनिया भर में अली के लिए श्रद्धांजलि संदेशों का सिलसिला जारी है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर अली खुद को महान तो कहते ही थे, लेकिन रिंग में उनके साथ दो दो हाथ करने वाले मुक्केबाज जॉर्ज फॉरमन के अलावा माइक टायसन और इवैंडर होलीफील्ड भी उन्हें महान इंसान की तरह याद कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक कई लोगों ने अली को याद किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मोहम्मद अली आप एक प्रेरणा हैं जिन्होंने इंसानी जज्बे की ताकत सबको दिखाई है। वहीं बिल क्लिंटन ने अली को यूं याद किया। कल रात मेरे दोस्त मोहम्मद अली का निधन हो गया। जब मैं एक लड़का था, मैंने उन्हें बॉक्सिंग करते हुए देखा था। मुझे लगता था कि शायद ये दोबारा हम कभी नहीं देख पाएंगे। उन्हें देखकर हम सोचते थे कि ये बॉक्सर है या बैलरीना। उनकी रफ्तार, उनकी सुघड़ता और ताकत सब जादुई था। बिल क्लिंटन के शब्द। अली के परिवार ने दुनिया भर से आने वाले संदेशों के लिए आभार जताया है। उनके भाई रहमान अली ने बचपन की यादें ताजा की।
Imagine this. As little boy, sitting on that step, we would daydream.
हम छोटे थे, घर की सीढ़ियों पर बैठकर हम दिन में सपने देखते थे। मेरा नाम रूडोल्फ क्ले था। वो मुझे कहते थे, रूडी, मैं एक दिन चैंपियन बनूंगा, मैं तुम्हें दुनिया भर में घुमाऊंगा और माँ के लिए नया घर खरीदूंगा। जो भी उन्होंने कहा वो सब किया। रहमान अली के शब्द। रिंग में बड़े बड़े बॉक्सरों को धूल चटाने वाले आक्रामक अली का दिल कितना कोमल था, ये फोटोग्राफर माइकल गैफनी बताते हैं। गैफनी ने 1970 में मोहम्मद अली के साथ एक साल बिताया। साउथ अफ्रीका के दौरे में हर रोज गलियारे में भिखारी जमा हो जाते थे और वो रुककर उनमें से हर एक को $100 का नोट देते थे। और मैं कहता था कि चैंपियन क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि $100 की कीमत यहाँ उतनी है जितनी हमारे यहाँ $10,000 के बराबर है। एक मुकाबले में सोनी लिस्टन को हराने के बाद मोहम्मद अली ने कहा था, मैंने दुनिया को हिला दिया। अब जब वो नहीं है तो मानो जैसे सारी दुनिया हिल गई है।
महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का अंतिम संस्कार अगले शुक्रवार को किया जाएगा। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
क्या ये संभव है कि कोई छात्र किसी परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लेकर पास हो जाए और परीक्षा के एक दो महीने के भीतर अपने विषय से जुड़े बुनियादी सवालों का भी जवाब न दे पाए? बिहार का मामला सामने ना आता तो शायद इस बात पर यकीन नहीं होता। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा के दो टॉपर जांच परीक्षा में फेल हो गए हैं। अधिक जानकारी के साथ पटना से मनीष शांडिल्य।
बिहार में बीते दिनों इस साल के इंटरमीडिएट टॉपर्स लिस्ट पर सवाल उठने शुरू हुए थे। ऐसा इंटरमीडिएट के दो टॉपर्स सौरभ श्रेष्ठ और रूबी कुमारी के टीवी इंटरव्यू सामने आने के बाद हुआ। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने 3 जून को टॉपर्स की दोबारा परीक्षा ली। इंटरमीडिएट साइंस और आर्ट्स की परीक्षा में पहले 5 स्थानों पर रहने वाले 14 छात्रों को जांच के लिए पटना स्थित BSEB दफ्तर बुलाया गया। जांच में आर्ट्स टॉपर रूबी राय को छोड़ 13 छात्र शामिल हुए। जांच के 24 घंटे से भी कम समय में बोर्ड अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह इसके नतीजों और नतीजों के आधार पर लिए फैसलों के साथ मीडिया से रूबरू हुए।
शीर्ष 13 परीक्षार्थी में 11 परीक्षार्थियों को शीर्ष योग पाया गया एवं शेष 2 परीक्षार्थी सौरभ श्रेष्ठ एवं राहुल कुमार को अप टू मार्क नहीं होने के कारण परीक्षा फल रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस पूरे प्रकरण की जाँच हेतु एक माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। विष्णुदेव राय महाविद्यालय किरतपुर राजा राम भगवानपुर वैशाली को समिति द्वारा प्रदत्त महाविद्यालय कोड तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बीएसईबी ने रूबी राय को एक और मौका देते हुए 11 जून को जांच के लिए आने को कहा है। फेल घोषित किए गए छात्रों में सौरभ श्रेष्ठ साइंस टॉपर थे, जबकि राहुल कुमार ने इंटरमीडिएट साइंस में तीसरा स्थान हासिल किया था। सौरभ और राहुल ने वैशाली जिले के उसी विष्णु राय कॉलेज से परीक्षा दी थी, जिसकी मान्यता बीएसईबी ने कल निलंबित की है। साथ ही रूबी भी विष्णु राय कॉलेज की ही छात्रा हैं। इस कॉलेज का रिजल्ट पिछले साल भी विवादों में रहा था। बीते साल जहां मैट्रिक परीक्षा में हुई नकल चर्चा में रही थी, तो इस साल इंटरमीडिएट के टॉपर्स की सूची विवादों में आई। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ये मसला किसी एक समस्या से जुड़ा नहीं है और भविष्य की बदनामी से बचने के लिए स्कूली शिक्षा के कई मोर्चों पर एक साथ गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है। शिक्षाविद प्रोफेसर विनय कंठ बताते हैं,
सब चीज को मिला के देखना होगा। जैसे मान लीजिए कि 46% अगर रिजल्ट होता है, तो ये अपने आप में ये भी एक समस्या है कि इतना पुअर रिजल्ट क्यों होगा, इतना खराब रिजल्ट क्यों होगा। तो इस मामले को समझने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एकेडमिक इंक्वायरी की ज़रूरत है कि क्वालिटी कैसा है, इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी कैसा है, पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है, पॉलिसीज़ क्या है जो इंस्टीट्यूशंस और पढ़ाई को गवर्न करता है, वो पॉलिसीज़ क्या है, उसकी नीतियाँ क्या है, और पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना ही होगा।
बिहार में स्कूली शिक्षा के वर्तमान हालात से वे लाखों बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं, जिन्हें किसी भी समाज और देश का भविष्य कहा जाता है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद और बदनामी का सबक यही है कि आने वाले दिनों में इन बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए अभिभावक, बोर्ड और सरकार सब मिलकर ठोस कदम उठाएं। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
बिहार के बाद रुख कर रहे हैं महाराष्ट्र का, जहां जमीन विवाद और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संपर्क रखने के आरोपों से घिरे राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना पड़ा है। एकनाथ खड़से के इस्तीफे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन भाजपा सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने संगीन आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। पिछले 2-3 हफ्तों से आरोपों के घेरे में रहे महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से इन आरोपों से बचने की पुरजोर कोशिश करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार गई जब पार्टी आलाकमान ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी और उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर हल्ला बोलकर केंद्र तथा राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी और पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों में 2 साल की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की छवि को देश के सामने रखा जा रहा था, लेकिन इन प्रयासों को महाराष्ट्र में ही सेंध लग गई। हालांकि खड़से सरकार से बाहर हो गए हैं, इससे महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कुछ बढ़ गई है। अब सरकार के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि खड़से की जगह कौन लेगा, जो महत्वपूर्ण विभाग खड़से संभाल रहे थे वह किसे सौंपे जाएंगे। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। कांग्रेस की ओर से नारायण राणे जैसे तेज तर्रार नेता को महाराष्ट्र की विधान परिषद में भेजा गया है, जो आने वाले मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें टक्कर देने में सरकार को खड़से की कमी महसूस होगी। वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर मानते हैं कि अब सरकार को दोहरी लड़ाई लड़नी होगी।
सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लेकिन पार्टी के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वो दिक्कतें इतने अर्जेंटली फ्लोर पे नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आने लगेगी। क्योंकि जब खड़से साहब को पता चलेगा कि उनको स्केपगोट बनाया गया है और उनसे एक डील किया गया है कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट होगा तब आपको क्लियर किया जाएगा और आपको क्लियर करने के बाद आपस मंत्रिमंडल में आएंगे, ये जो डील है, ये डील में हवा ज्यादा है और सच कम है। तो जब डील उनको पता चलना शुरू होगा कि ये डील में कुछ फायदा नहीं है अपने के लिए, तो वो बाहर से और अंदर से बहुत जगह बोलना शुरू करेंगे। शायद बहुत लोग ये जानते नहीं है कि खड़से पहले से बहुत नाराज थे और पहले से बहुत बोलते थे, पूरे मंत्रालय के अंदर के रूम में ही बोलते थे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। अभी तो उनको खुलेआम वो बोलना शुरू करेंगे और उधर से बहुत स्टोरीज मिलेंगी जर्नलिस्टों को और उनका जो डिविजन है पार्टी का अंदर वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्र में खड़से का बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है, मास सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, तो उससे पार्टी वीक हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट इमीडिएटली वीक नहीं होगा। अभी सवाल यह है कि नारायण राणे किसके ऊपर हमला करेंगे? खड़से के ऊपर तो हमला नहीं कर सकते, खड़से रिजाइन रहे। ज्यादा से ज्यादा वो मांग कर सकते हैं कि खड़से आपकी इंक्वायरी करो, इसके आगे तो कुछ नहीं बोल सकते। उनको तो नारायण राणे को अटैक करना होगा, देवेंद्र फडणवीस सरकार को। अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, बहुत एलिगेशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत एकदम क्लीन गवर्नमेंट है, लेकिन तब तक दिल्ली की हाईकमांड बीजेपी की खड़से को पैचअप करने के लिए कोशिश करेगी।
खड़से का इस्तीफा लेकर खुद को शाबाशी देने में व्यस्त भाजपा और महाराष्ट्र सरकार को आने वाले दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि खड़से के बिना महाराष्ट्र की सरकार यह कैसे कर पाती है।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा, रिपोर्ट सुना रहे थे अश्विन अघोर। क्या आपको कोई ऐसा मुद्दा या ऐसी कोई घटना याद आती है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़े नजर आते हों? सोचिए सोचिए, एक ताज़ा वाकया हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में एक मंदिर और दुकानों के अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन मंदिर बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मानो हाथ मिला लिया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
अगर छुआ मंदिर तो तुझे दिखा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों इस तरह के कई गीत बज रहे हैं। ये गीत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरोध में बजाए जा रहे हैं जिसमें 400 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मंदिर और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माने तो ये मंदिर और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और उनके परिजनों ने अवैध तरीके से बनाया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में देश के सभी राज्यों को सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर बनाए गए पूजा स्थलों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के निर्माण पर कार्रवाई नहीं की तो हमर संगवारी नाम के संस्था ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की। इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने की 10 तारीख को सरकारी जमीन के सभी निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए मंदिर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले राकेश चौबे कहते हैं,
इन्होंने जो निर्माण किया वो सारा निर्माण अवैध की श्रेणी में है। 4.5 एकड़ लगभग जमीन है, इसमें 19 दुकानें बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं, सत्संग भवन बनाया गया है, इसके अलावा अन्य सर्वेंट क्वार्टर, लान, सारे चीज बनाए गए हैं। जो आलीशान भव्य मंदिर है जिसमें अरबों रुपए खर्चा हुआ है, ये मंदिर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष होते हुए इस मंदिर का निर्माण गौरीशंकर ने किया।
राकेश चौबे के शब्द जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन के सारे निर्माण तोड़ने के आदेश दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महीने भर होने को आ गए छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इसके उलट विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक हर दिन मंदिर नहीं तोड़े जाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में प्रार्थनाओं के दौर चल रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल के साथ कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल हैं। हमने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की।
हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के युवा और जन भावना हम इस मंदिर की आस्था से जुड़े और सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं कि वो जो उन्होंने जो निर्णय दिया है उसे परिवर्तन करते हुए मंदिर में का जो यथावत स्थान पर रहने दिया जाए।
हनुमान मंदिर में जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का तोड़ने का, उससे शहर के सभी निवासी, सभी धर्म प्रेमी लोग नाखुश है।
हस्ताक्षर अभियान हमारा निरंतर चल रहा है, पूरे खाली रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के कोने कोने से लोग मंदिर आ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं।
मंदिर को बचाने की इस मुहिम में अब भाजपा के विधायक भी शामिल हो गए हैं। भाजपा के 34 विधायकों ने अपने नेता मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा है। इन विधायकों की अगुवाई करने वाले छगन मुंदड़ा कहते हैं,
34 विधायकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जो महादेव घाट स्थित हनुमान मंदिर है वह खंडित नहीं होना चाहिए और सरकार को पुनर्विचार याचिका लगाई जानी चाहिए करके जो मंदिर समिति के सदस्य है वो लोग जा करके यह हस्ताक्षर वाले ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे।
अवैध मंदिर बनाने के आरोपी विधानसभा अध्यक्ष पूरे मामले में खुद चुप हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इस मंदिर को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन इन सबके बीच मंदिर बचाने के नारे लगातार गूंज रहे हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
सूखे का जिक्र आते ही हम बात करते हैं विदर्भ की, मराठवाड़ा की और बुंदेलखंड की, लेकिन भारत के भीतर छोटे छोटे ना जाने कितने विदर्भ, कितने मराठवाड़ा और कितने बुंदेलखंड हैं जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां बिन पानी सब सून होता जा रहा है। भोपाल से शुर नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा है, लेकिन हालात दूसरे इलाकों में भी अच्छे नहीं हैं। कुछ जगहों में स्थिति ऐसी है कि लोगों को 4-5 दिन में एक बार ही पानी मिल पा रहा है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं कि लोगों को कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के इछावर में हाल ही में धारा 144 लागू करनी पड़ी ताकि सभी को पानी मिल सके। वहीं सीहोर जिले की आसरा तहसील का भी यही हाल है। शहर के अंदर से जाने वाली पार्वती नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाका भी पानी के लिए तरस रहा है। आष्टा के खाचरोद गांव की आबादी 2200 है, लेकिन गांव में मात्र 2 पंप काम कर रहे हैं, जिससे पूरा गांव इस वक्त अपनी जरूरत पूरा कर रहा है। पेशे से किसान खेड़त सिंह बताते हैं,
पानी की बहुत ज्यादा है, पानी नहीं मिलता है, बेला पड़ती है लोगों को, बहुत आफत है। कोई ट्यूबवेल में इनमें पानी नहीं है, कुआं में भी नहीं है, कुआं सूखा पड़ा, तुमने देखो वो तो पूरा गांव के और उधर ज्यादा है, गांव में ज्यादा है।
पानी की कमी के चलते जो हालात बने हैं वो बरसों से देखे नहीं गए थे। आज लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके के एक और किसान मोहम्मद इस्माइल खान लाला कहते हैं,
यहाँ क्या है कि पानी की बहुत कमी है। मतलब ये मान के चलो आपके 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। बोरों में पानी खत्म हो गया, जो आज 35 साल से बोर चल रहे थे वो बिल्कुल जीरो हो गया, पानी नहीं है। मवेशी के लिए परेशानी है, मवेशी मतलब ये मान के चलो कि मिल गया पानी, ठीक नहीं तो कोई जरूरी नहीं पानी मिल पाए इनको। खेती भी सूखा 30 साल, ये पूरी अपनी जमीन जो बोई हुई थी आज 30-35 एकड़ जमीन है, ये खेत जो दिख रही है आपको, इसमें इतना तक गम हो गया था, पानी नहीं होने की वजह से सारा खत्म हो गया। और मुआवजा मिला तो खाली क्या 2-2 हजार रुपये, बहुत परेशानी पानी की।
पानी नहीं होने की वजह से ज्यादातर खेत खाली नजर आ रहे हैं। वहीं ज्यादातर हैंडपंप या तो जवाब दे चुके हैं या फिर बड़ी मुश्किल से पानी निकल रहा है। वहीं यहां के एक गांव नरपाखेड़ी के भैरव सिंह भी पानी की तलाश में बैलगाड़ी में टंकी लेकर निकले हैं।
या कहीं पानी की दिक्कत ही रही, बहुत परेशानी, घर को काम का है कि पानी सब भागता फिर दफर उफर, अब पानी मिलते नहीं, बैल भैंस सब तीसा बन गया, मवेशी भी तीसी, फसल भी सूखी, सब सूख गई, अब कहीं करम भाई, पानी की तो बहुत ही परेशानी।
भोपाल से लगा रायसेन जिला भी पानी की कमी से जूझ रहा है। लोगों को पानी के टैंकर का इंतजार करते हर जगह देखा जा सकता है। शहर में कहीं पानी 2 दिन छोड़कर तो कहीं 4 दिन छोड़कर मिलता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अब पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर हैं। हर किसी की जिंदगी इस वक्त पानी के इर्द गिर्द घूम रही है। आम लोग जहां पानी के लिए काम पर नहीं जा पा रहे हैं, वहीं मजदूर पानी के इंतजार में मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं।
दिक्कत है कि सर सब दिन पानी का फेंटने पड़ता, पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 2-3 दिन दिन में एक टैंकर आता, एक टैंकर में पानी नहीं मिल रहा सर,
सब दिन पानी खिलाने बैठे रहो, मजबूर मजदूर आदमी मजदूरी नहीं कर पा रहा है पानी के वजह, सब दिन पानी के लाने खड़े रहो, लाइनों में लगे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टैंकर आते हैं पानी के लाने, आधा बेकरा पानी जनता को पीने को नहीं मिल रहा गांव वालों।
स्थिति ये है कि कई जगह लोग पानी के बर्तन सुबह से लाइन में लगा देते हैं ताकि टैंकर आने पर उन्हें पानी पहले मिल सके। लोगों को अब बस इंतजार है तो मानसून का, जो 18 से 20 जून के बीच आने की संभावना है। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
कार्यक्रम में अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। हरिता कांडपाल अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, आज के अखबारों में जाहिर है सबसे पहले जिस तस्वीर पर नज़र पड़ रही है वो पहले पन्ने पर महान मुक्केबाज मोहम्मद अली की, सभी अखबारों पर यही छाई हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है द ग्रेटेस्ट पंच इज आउट, महानतम जो है वो विदा ले चुके हैं। इसी तरह अन्य अखबारों में भी छाई है। और एक खबर जो सभी अखबारों में प्रमुखता से ली गई है वो है मर्सिडीज हिट एंड रन केस जो है दिल्ली का, उसमें पहली बार जो है वो नाबालिग पर बालिग की तरह केस चलाया जाएगा। इस मामले में बात ये थी कि जो अभियुक्त इसमें बनाया गया है वो चार दिन के, इस घटना के चार दिन बाद ही वो बालिग हो गया था, तो इसलिए ये फैसला पहली बार लिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से, उनके इस्तीफे की खबर भी सुर्खियां बनी है। आज द संडे एक्सप्रेस ने लिखा है, अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि हिज प्लॉट अनरेवल्स एंड खड़से लूजेस जॉब, खड़से की कुर्सी चली गई है। और महाराष्ट्र में भाजपा के नेता उनके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे, अखबार ने ये लिखा है। इसके अलावा एक खबर जो सभी अखबारों में मैं देख रही हूँ, हरियाणा में जो जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन की चेतावनी दी गई थी उस पर जो है खबर छपी है। द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि क्वेश्चन मार्क्स ओवर पीसफुल जाट प्रोटेस्ट, मतलब कि जाट आंदोलन को लेकर शांतिपूर्ण रहेगा इस पर सवाल है, क्योंकि पिछली बार बहुत हंगामा हुआ था और इस बार भी इस पर नज़र रहेगी सबकी। और इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि इंटरनेट सेवा पर बंद कर दिया गया है ताकि जो है हिंसा फैलने से रोकी जा सके। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर दसवें पन्ने पर मैंने देखी, सेंसर बोर्ड ने महाश्वेता देवी जो बहुत प्रख्यात लेखिका हैं उन पर बनी एक फिल्म थी जिससे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जोजी जोसेफ ने बनाया था, 5 मिनट की ये फिल्म है। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने उस पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्होंने उसमें कहा गया है कि महाश्वेता देवी जी का नाम उसमें गलत तरीके से बोला गया है। हालांकि महाश्वेता देवी जी ने कहा है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है कि नाम तो बिल्कुल ठीक लिया गया है और इस फिल्म को क्यों रोका गया है। तो ये खबरें हैं। इसके अलावा एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स मैगज़ीन में मैंने देखी कि गुजरात की मुख्यमंत्री वो उनकी कुर्सी जा सकती है और गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है।
बहुत शुक्रिया। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में कल महिला एकल वर्ग का फाइनल, चौथी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स को कड़े संघर्ष के बाद 7-5 6-4 से मात दी। इससे पहले साल 1998 में स्पेन की अरांचा सांचेज विकारियो ने मोनिका सेलिस को हराकर फ्रेंच ओपन जीता था। भारत के लिहाज से फ्रेंच ओपन तब यादगार बन गया जब लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने मिश्रित युगल के फाइनल में भारत की सादिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार क्रोशिया के इवान डोनिंग को 6-4 4-6 10-8 से हराया और खिताबी जीत हासिल की। इसके साथ ही लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने मिश्रित युगल का अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। पेस और हिंगिस ने पिछले साल विंबलडन और अमेरिकी ओपन जीता था और इस साल के शुरू में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। आज पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा। उधर ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 4 देशों के महिला हॉकी टूर्नामेंट में कल कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय महिला टीम जापान से 2-1 से हार गई। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर इंडोनेशिया ओपन में महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता हासिल चीन की वांग यीहान ने शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के कैरोलिना मारिन को 16-21 21-11 21-17 से हरा कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां आज उनका सामना चीन ताइपे की ताई जू युंग से होगा। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल डेनमार्क के यानो योर्गेंसन और मलेशिया के ली चोंगवेई के बीच होगा।
खेल समाचारों के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार, मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में किया जाएगा। अफगानिस्तान के बाद प्रधानमंत्री मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कतर के एमिर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मथुरा में जवाहर बाग में हिंसा में स्वाधीन भारत सुभाष सेना के नेता राम वृक्ष यादव की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक जावेद अहमद ने बताया कि मथुरा ऑपरेशन में मारे गए कुछ लोगों की पहचान हो गई है, उनमें राम वृक्ष यादव की भी शव की पहचान की गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक एक घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।